अगले दिन निक सुबह जल्दी उठा और एमा के उठने से पहले ही हॉस्पिटल जाने के लिए सारी तैयारियां कर लीं। निक डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोले, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, एली का डेथ सर्टिफिकेट और डोनेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, अब बस एमा को उठाना बाकी है। निक एमा के रूम में गया। निक ने एमा पर पानी डालते हुए कहा, एमा गुड मॉर्निंग, गेट अप। एमा गुस्से में बोली, यार क्या प्रॉब्लम है निक, ना खुद सोते हो ना ही दूसरों को सोने देते हो। मैंने सब रेडी कर लिया, अब तुम बस जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं। एमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही निक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हुए एमा का इंतजार कर रहा था। निक ने डाइनिंग टेबल पर एमा का इंतजार करते हुए अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया। उस पर काफ़ी सारी मिस्ड कॉल्स थीं जिसमें इंडिया का नंबर शो हो रहा था। निक ने कहा, ये इंडिया का नंबर किसका है, रोहन ने किया होगा, वैसे आर्या भी तो इंडिया गया हुआ है अपने घर पर, हो सकता है उसका नंबर हो, बाद में कॉल करके पता लगा लूँगा। उसने बाथरूम की तरफ देखा और बोला, एमा जल्दी आओ ना यार। एमा बाहर आई, दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल चले गए। वहाँ उन दोनों को हॉस्पिटल में डॉक्टर नील मिले। निक ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे डॉक्टर नील, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर नील बोले, हाँ क्योंकि मेरा भाई और बहन दोनों यहीं पर जॉब करते हैं, मेरा छोटा भाई क्रिश डॉक्टर है और मेरी सिस्टर मिल्सा यहाँ पर सीनियर रिसेप्शनिस्ट है। एमा बोली, वाओ, तब तो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। कैसी हेल्प, और आप लोगों को कब से दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ने लगी? डॉक्टर नील ने हंसते हुए कहा। निक ने कहा, वो हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी यहाँ की ही, पेशेंट थी वो। डॉक्टर नील बोले, हाँ तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन तो रिसेप्शन पर ईजिली मिल जाएगी। एमा बोली, इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट है, अपने भाई से मिलवाओगे हम? हाँ क्यों नहीं, आओ चलो। डॉक्टर नील निक और एमा को अपने भाई क्रिश के केबिन में ले गया। क्रिश ने दोनों को देखते ही कहा, कैप्टन निक और एमा यहाँ पर, इंस्टीट्यूट का हॉस्पिटल तो बड़ा ग्लोरिफाइड है, फिर आज हमारे हॉस्पिटल की ज़रूरत कैसे पड़ गई आपको? वो दोनों को पहले से ही जानता था। निक ने कहा, वो हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तुम ये फाइल्स पढ़ लो, तुम सब समझ में आ जाएगा। डॉक्टर क्रिश फाइल पढ़ने लगे। निक और एमा को एली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एली की डेथ को लगभग 8 साल हो चुके थे और क्रिश ने हॉस्पिटल अभी ज्वाइन किया था। क्रिश ने फाइल बंद करते हुए कहा, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत पुरानी है, मुझे यहीं लगता हॉस्पिटल इतना पुराना डेटा अपने पास सेव करके रखता होगा। एमा बोली, हॉस्पिटल को हम डेटा देना पड़ेगा क्रिश, हम एली की फैमिली हैं, उससे जुड़ी हर एक जानकारी रखने का हम हक है। एमा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कुछ भी इलीगल कर रहे हो, पर इतना पुराना डेटा? डॉक्टर नील ने कहा, एक काम करते हैं, हम मेरी बहन मिल्सा के पास चलते हैं, वो यहाँ सीनियर रिसेप्शनिस्ट है, हो सकता है वो हमारा काम थोड़ा ईजिली और जल्दी कर दे। डॉक्टर नील निक और एमा को मिल्सा के पास लेकर गए। वहाँ नील ने उसे वो फाइल दिखाई। मिल्सा फाइल पढ़ने के बाद बोली, ये तो बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं लगता इतना पुराना डेटा। निक ने बीच में ही कहा, वो भी जोर से और गुस्से में, मुझे जानना है, वो भी अभी इसी वक्त। मिल्सा ये देखकर सहम गई। वो रुके हुए शब्दों में बोली, आई विल ट्राई। मिल्सा निक और एमा को हॉस्पिटल की लाइब्रेरी लेकर गई। वहाँ पुराना डेटा सेव करके रखा गया था। मिल्सा को वहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद एक फाइल मिली। मिल्सा फाइल पढ़ते हुए बोली, ये एली के हार्ट डोनेशन के पेपर हैं, बट इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि इसमें बस एड्रेस फिल किया गया है। अगर नाम लिखा होता तो उससे बच्चे के नाम से उसकी भी फाइल मिल जाती, लेकिन यहाँ के CEO मिस्टर इवान उस वक्त हार्ट सर्जन थे, ये सर्जरी उनकी की हुई है और वो आउट ऑफ स्टेशन है। निक ने कहा, क्या तुम मुझे ये फाइल दोगी? निक ने फाइल देखी तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि एली का हार्ट डोनेट किया गया था, वो एक लड़की थी और फिर उसका एड्रेस था। निक ने उस एड्रेस की फ़ोटो क्लिक कर ली। निक ने कहा, थैंक्स मिल्सा, ये मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी मिस्टर इवान आ जाएं तो मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मेल कर देना। उसके बाद निक और एमा वापस घर आने के लिए गाड़ी में बैठ गए। एमा रास्ते में बोली, हो गया तुम्हारा? वो मिल्सा पर इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं हुआ अभी, वो पुराना डेटा कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। अब तुम्हारा क्या करना है? कुछ ऐसा जिससे हम कुछ और पता चले। मतलब यही कि तुम चुपचाप जहाँ जा रहा हूँ साथ में चलती रहो। मैं समझ गई तुम क्या करना चाहते हो। एमा बोली, नो निक, मैं नहीं जाऊँगी इस एड्रेस पर, और ये लड़की कौन थी, अब कहाँ है क्या पता, एड्रेस भी बदल गया होगा इसका तो। निक ने कहा, मुझे बस पता लगाना है। तुम पागल हो गए हो, कहाँ कहाँ भटकोगे, और इन सब चक्करों में कहीं प्रियल से दूर ना हो जाओ। निक ने कहा, मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ, मैंने सोच लिया है ये एड्रेस इंडिया में है। मतलब तुम नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। एमा ने हाथ पटक दिए, उसके पास निक की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छा ठीक है, चल रही हूँ, आर्या भी इंडिया गया हुआ है और रॉन और जीनू की भी कल इंडिया की फ्लाइट है, उनके साथ ही चलते हैं हम भी। निक ने कहा, मुझसे कल तक का वेट नहीं होगा। अरे मुझे अपने पेंडिंग वर्क्स तो कंप्लीट करने दो, कल साथ ही चलते हैं ना, इतना तो रुक जाओ। ऑलमोस्ट 18 घंटे लगेंगे, मुझे नहीं रुकना, मैंने इमरजेंसी फ्लाइट बुक कर ली है, रॉन और जीनू को भी मैसेज छोड़ दिया है, वे एयरपोर्ट पहुँच गए होंगे, अभी 1 बज रहे हैं और 2 बजे फ्लाइट है, कल 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो पैकिंग, वहाँ जाकर शॉपिंग कर लेना। हद है, बहुत ज़िद्दी हो तुम। निक ज़बरदस्ती रॉन, एमा और जीनू को 2 बजे की फ़्लाइट से इंडिया लेकर चला गया। उसे एली का दिल किसको दिया गया है के बारे में जानना था, वो भी जल्दी से जल्दी। अमृतसर, अर्जुन, प्रियल और प्रांजल तीनों गुरुद्वारे से लौट रहे थे। प्रांजल ने पूछा, दीदा जी, मांगा बाबा जी से? अर्जुन बोला, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, निक को ही मांगा होगा, प्रियल बोली, नहीं, मैंने इस बार बाबा जी से निक और मेरे बीच एक पक्का रिश्ता मांगा है, बस वो हमारे रिश्ते को एक नाम दे दे। अर्जुन हैरान हुआ, मतलब? प्रियल बोली, मतलब ज्यादा नहीं, अगर उन्हें मुझसे प्यार है तो वो बताए तो सही मुझे, और अगर नहीं है। प्रियल चुप हो गई। थोड़ा चुप रहने के बाद वो बोली, तो भी बता ही दें। प्रांजल ने कहा, और तुझे ये क्यों लगता है कि वो प्यार नहीं करते? उनकी आंखों में दिखती है तेरे लिए फीलिंग्स। प्रियल बोली, तो बताते क्यों नहीं? बता देंगे, थोड़ा सब्र तो करना होगा। अर्जुन उसे छेड़ता हुआ बोला, देख इसे कितनी जल्दी पड़ी है निक से शादी की। प्रियल बोली, तुम फिर मार खाओगे मुझसे, चलो जल्दी, पता है ना नानी को देर तक बाहर घूमना पसंद नहीं है। वो तीनों घर पहुंच गए। थोड़ी देर इधर उधर फिरने के बाद प्रियल के पास उसकी फ्रेंड प्रियल शर्मा का कॉल आया। प्रियल शर्मा बोली, प्रियल कैसी है तुम? तुमने बताया नहीं तुम इंडिया आई हुई हो। प्रियल ने कहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी, बस दिमाग से निकल गया। देख, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना। हाँ यार, उसी के लिए कॉल किया था, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तेरा तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा और तेरे पापा की तरफ से फीस भी पे हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं करती हूँ कुछ, मैं देख लूंगी तुम्हारी फीस का भी। पर कैसे? मेरे पास सिर्फ कल का दिन है और मैं एक दिन में 50,000 रुपये कहाँ से अरेंज करूँ? पूरे साल की फीस एक साथ ही देनी होती है, मेंटेनेंस और फीस मिलाकर 50,000 रुपये होते हैं। मैं जब डिजाइनर बन जाऊंगी तो आई प्रॉमिस मैं वापस कर दूंगी। प्रियल बोली, कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा, मैं कल चंडीगढ़ आकर देखती हूँ कैसे करना है सब कुछ। प्रियल फोन रखकर नानी के पास आई। नानी, मुझे कल चंडीगढ़ जाना है।
हाँ तो मैं दीपू को बोल दूंगी, तुम तीनों को ले जाएगा। नानी ने प्रियल को पराठे की प्लेट पकड़ाई और कहा। प्रियल एक पराठा उठाकर उसे खाते हुए बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ अब नानी, मैं अकेले ही जाऊंगी, मुझे नहीं पता। पर बच्चे अकेले? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना नानी? ठीक है, चली जाना। प्रियल गले लगते हुए बोली, ओह आई लव यू नानी। प्रियल टेरेस पर आ गई। वहां उसने अपने सोने की अंगूठी और गले में मौजूद सोने की चेन को देखा। दोनों को देखकर वो रो पड़ी। प्रियल रोते हुए बोली, मम्मा मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मुझे माफ कर देना, मुझे आपकी अंगूठी और चेन बेचनी पड़ेगी। ये बस दो ही चीजें थी मेरे पास आपकी, अब वो भी नहीं रहेगी। अंगूठी और चेन बेचने के बारे में सोचकर प्रियल पूरी रात उदास रही और इस वजह से उसे नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रियल सुबह 7 बजे की गाड़ी लेकर चंडीगढ़ निकल गई। 10 बजे के करीब वो वहां पहुंची। वहीं निक, रॉन, एमा और जीनू भी लगभग 10 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए। एयरपोर्ट से निकलते ही वे लोग बाहर इधर उधर किसी रेस्टोरेंट की तरफ देख रहे थे। तभी रॉन बोला, मैंने बुकिंग करा ली है होटल में। जीनू ने कहा, पहले मुझे शॉपिंग करनी है, इस निक के बेस पर हम आधा सामान नहीं लेकर आ पाए। निक ने कहा, अरे यार यहाँ एयरपोर्ट के पास ही मॉल होगा, मेरा कार्ड यूज कर लेना जितनी शॉपिंग करनी है, खाना भी खा लेंगे और यहाँ जितने भी दिन रहोगे सारा खर्चा मैं दे दूंगा। बस करो, हम जानते हैं तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, पर इसे अपने होने वाली बीवी के लिए संभाल कर रखो, हम अपना खर्चा खुद कर लेंगे, रॉन ने मुंह बनाते हुए कहा। सभी चुपचाप आगे चलते रहे। काफी आगे चलने के बाद एमा बोली, तुम्हारा वो एड्रेस भी पंजाब में ही ना? हाँ। जीनू बोली, देखो निक, इन सब में अगर तुमने प्रियल को हर्ट किया तो मैं तुम्हें बहुत मारने वाली हूँ। निक ने चलते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर है कहाँ ये प्रियल शर्मा? पिछले 3 दिन से मेरी कोई बात नहीं है उससे। जीनू ने कहा, दत्ता के घर होगी और कहाँ, तुमने जो डांटा उसके बाद घर से निकलने की हिम्मत नहीं हुई होगी। जीनू की बात सुनकर निक मुस्कुरा दिया। वहीं प्रियल प्रियल शर्मा से मिली। वे दोनों ज्वेलरी बेचने के लिए एक मॉल में चले गए। निक, रॉन, एमा और जीनू शॉपिंग करने के लिए भी उसी मॉल में आ गए। प्रियल ज्वेलरी शॉप पर गई। प्रियल ज्वेलरी शॉप के मालिक से बोली, प्लीज अंकल, आप ये किसी और को मत बेचिएगा, आप चाहे मुझे पैसे कम ही दे दें, मैं कभी ना कभी वापस आकर अपनी ज्वेलरी ले लूंगी, बस मुझे 4-5 महीने का टाइम दे दीजिए। शॉपकीपर ये सुनकर बोला, एनी की लोड़ पड़ गई तेनू कुड़िए, जो ये बेचने हैं तुझे? प्रियल बोली, बस आप। इतना कहकर वो चुप हो गई। शॉपकीपर ने गहनों की जाँच की और फिर प्रियल को पैसे दे दिए। वो दोनों शॉप से बाहर आ गए। प्रियल शर्मा बोली, सॉरी प्रियल, तुम मेरी वजह से अपनी मम्मा की ज्वेलरी बेचनी पड़ रही है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं ये किस्मत भी इतने खराब पॉइंट पर लाकर क्यों छोड़ देती है। प्रियल ने अपने आंसुओं को साफ किया और कहा, तुम ऐसे गिल्टी फील मत करो, तुम मेरी वजह से वहां हो और मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, बाकी डोंट वरी, मैं कभी ना कभी इसे वापस आकर ले लूंगी। तभी अचानक निक को एक दुकान के शीशे में प्रियल दिखी। प्रियल की दिल की धड़कन बढ़ गई। आसपास का माहौल थोड़ा धुंधला हो गया। निक के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। क्रमशः